सत्या है, यह परमात्मा शिव के रूप से तादात्म्य प्रैक्टिकल में स्थापित करने वाला वह शंकर का स्वरूप है। ब्रह्मा और शिव को मिला के क्यों नहीं कर दिया शास्त्र में? विष्णु और शिव को मिलाकर के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव शंकर को मिलाकर के ही एक क्यों कर दिया? प्रवेश तो ब्रह्मा में भी होता है लेकिन एक आकार नहीं हो पाता, कार्य संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए शिव और ब्रह्मा को एक मिलाकर के एक नहीं किया, शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। तुमसे पूछो, जज करो, अब आप जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाएगा जब असली चित्र बनावेंगे तो। क्या सहज हो जाएगा? कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा प्रैक्टिकल में है, जो अभी आया हुआ है वो गीता का भगवान है, गीता माता है, तो कोई जड़ किताब की बात है क्या? नहीं, गीता माता है, सारे जगत की जननी है, जगदम्बा के रूप में उसका गायन है, जगत की माता है तो जगत पिता भी होगा, गीता माता है तो गीता पति भगवान भी होगा, कोई जड़ शिवलिंग की बात है क्या? तुमको मालूम है गीता का ज्ञान अभी फिर से बाप दे रही है, फिर से माना, फिर से का अर्थ माना दोबारा। क्या कहा? गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं, वो तो फिर से का अर्थ क्या लगाए देते? 5000 वर्ष पहले दिया था और अभी फिर से दे रहे हैं। अरे वो तो हर 5000 वर्ष बाद देते रहते हैं, उसको फिर से थोड़े कहेंगे, फिर से कब कहेंगे? जब ऐसी संगम की जन्म ने पहले भी दिया हो और अब भी दे रही है। पहले भी ज्ञान का बीज बोया था मुकर्र रथ के द्वारा और अभी भी तो ये मुकर्र रथ निमित्त बना है, जो संसार में नतमूर्ति के रूप में जिनकी पूजा होती है। तो गीता में है कि गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़ेगा? क्या गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े? एक बार के सुनाने से काम नहीं होता, एक बार सुनाते हैं तो सुन लेते हैं, सुनाने वाले ने सुनाया, सुनने वालों ने सुना, समझा नहीं, तब फिर बाप को दूसरा रूप ईश्वर का धारण करना पड़ता है, माता का रूप छोड़ना पड़ता है। माता के रूप में छोटे छोटे बच्चे ज्ञान की उस गहराई को नहीं समझ सकते, छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज में बेसिक की पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं। वही रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास के जब दोहे और कवित्व बीए में पढ़ाए जाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी गुणता को बेसिक के बच्चे समझते नहीं है। वो बच्चे बड़े होकर जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ाई पढ़ते हैं, तो सारे रहस्य को जान लेते हैं। तो बोला गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े, एक बार सुनाने से काम नहीं होगा, ये कंपल्शन है। गीता तो तुमने नहीं बनाई है। क्या गीता माता है तो गीता माता को कौन बनाता है? जो गीता पति भगवान है वही तो गीता माता को बनाता है, तुमने थोड़े ही बनाया है। बनाने वाले तो उस झूठी गीता को बनाने वाले, पुस्तकीय गीता को बनाने वाले तो मनुष्य है, परंतु वो बनाने के बावजूद भी अर्थ को नहीं समझते, नहीं जानते, कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ करके दिया। उन्होंने घोड़े गाड़ी समझ ली। अरे शास्त्रों में लिख भी दिया है शरीरम रसम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु, लिख तो दिया है सब कुछ लेकिन ताल में नहीं बैठा है साई कोई। शरीर को रस समझ है, इंद्रियों को घोड़ा समझ है। तो शरीर जब रस हुआ तो अर्जुन के रथ में कोई सूरत में आया होगा क्या? जरूर पुरुषार्थियों के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हीरो पाठधारी है उसके मुकर्रर रथ शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके परमात्मा बाप ने गीता ज्ञान सुनाया होगा। वो गीता ज्ञान सुनाने वाला कृष्ण की सोल नहीं है जो तथाकथित ब्राह्मणों ने समझ लिया है कि गुंडार दादी के अंदर कृष्ण की सोल भगवान बन करके आई है और भी गीता ज्ञान सुनाई रही है। भगवान आता है तो जब सुनाता है तो उसके सुनाई हुई बात का जादू की तरह असर होना चाहिए ना। क्या कहते हैं मुरली तेरी में जादू, उसकी मुरली में जादू, वो मुरली जादू का काम करती है 69 से और अब तक अव्यक्तवाणी गुलजार दादी के तन से चलते हुए कितने वर्ष हो गए? 30-31 वर्ष हुए। ब्राह्मणों की धारणाएं नीचे गिरी हैं, ब्राह्मणों का संगठन टूटा है, प्योरिटी से यूनिटी गिरी है या चढ़ी है, इससे क्या साबित हुआ? भगवान की मुरली अगर गुंजार दादी में चल रही है तो जादू की गति से परिवर्तन हुआ या पतन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? यूनिटी भंग हो रही है या यूनिटी बढ़ रही है? फिर जैसे दुनिया में समझते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, क्या आगे बढ़ रही है? जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है, महलमारियां अटारियां बढ़ रहे हैं लेकिन सुख शांति की समृद्धि हो रही है। इतने प्यार और सौहार्द जो सहनशीलता है एक दूसरे के प्रति होना चाहिए सहनशीलता, वो बढ़ रही है या घट रही है? तो उत्थान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। जो समझदार है वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया का पतन हो रहा है। तो कोई घोड़े गाड़ी में परमात्मा बाप ने आकर के ज्ञान नहीं दिया? जरूर कोई शरीर रूपी रथ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला कोई है जिस हीरो पाठधारी में परमात्मा बाप आकर के ज्ञान देते हैं और इंद्रियों रूपी घोड़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मन की बुद्धि की लगाम अपने बुद्धि रूपी हाथ में लेते हैं। इस बात को दिखाने के लिए कवि ने रूपक बनाया है, ऐसा चित्र चित्रकारों ने किया है। जिन चित्रकारों ने, जिन कवियों ने वो चित्रण किया, वो कविता बनाई, वो चित्रकार और कवि तो रहे नहीं। बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले मनुष्य व्याख्या करते रहे। मनुष्य दिन पर दिन विकारी होते गए या निर्विकारी बनते गए, दुनिया में विकार तो बढ़ते ही रहे शास्त्र बनने के बाद, तो विकारी बुद्धि से उसके अर्थ कैसे होंगे? अर्थ विकारी होंगे या निर्विकारी होंगे? अर्थ भी विकारी होते गए, विचारी अर्थ होते गए। एक ही गीता और उसकी एक तो आठ से ज्यादा गीताएं बनी टीकाएं बन गई। माध्वाचार्य की टीका कहती है कि आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा तुल्य अलग है। और शंकराचार्य की गीता क्या कहती है, क्या कहती है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, आत्मा से परमात्मा एक ही आत्मा सब कुछ है, वो अनेक रूपों में संसार में प्रत्यक्ष होती है। अरे एक गीता की व्याख्या में इतना बड़ा अंतर, तो तुंडे तुंडे मकर भिन्ना वाली बात होगी। भिकारी बुद्धियों ने विकृत अर्थ निकाल लिए और पतन होता चला गया। इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रों ने, इन शास्त्रकारों ने सबको डुबोया। भगवान ने कोई उसे स्थूल घोड़ा गाड़ी में बैठ करके ज्ञान नहीं दिया जो टीवी में भी दिखाते हैं। क्या आनंद का सागर कौन है, ये टाइटल किसका है, है? आनंद का सागर परम पिता परमात्मा स्वयं है या कोई मनुष्य हो सकते हैं? तो शास्त्र में चाहे कुछ भी लिख दे, टीवी में कुछ भी दिखाए दे, लेकिन दुनिया को सुधारने का काम तो एक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का है। वही आनंद का सागर है, सुख का सागर है। वो स्थूल घोड़े गाड़ी में आकर के ज्ञान नहीं देता, वो शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएगी क्या? सचिव जो कृष्ण पैदा होगा उसके लिए कोई घोड़े गाड़ी आएगी क्या? तो वहां तो घोड़े गाड़ी आने की बात ही नहीं है। हाँ वो प्रिंस है सचिव का, नई सृष्टि का प्रिंस है। वहां तो ऑटोमेटिक ऐसे पक्षी होंगे, प्रवीण पक्षी होंगे उड़ने में, आंख के इशारे से अपनी दिशा चेंज करेंगे, उड़ेंगे, बैठेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे। प्रकृति ही सारा कार्य मुहैया करेगी। तुम बच्चों को कुछ भी करने की दरकार, कारखाना बनाने की दरकार, चलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो वो कृष्ण कोई घोड़े गाड़ी में थोड़े ही आएगा, कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी आदि थोड़े ही आएगी। सचिव में अगर कृष्ण होता तो फट से उनके लिए 2 लाख की गाड़ी ले आते। क्या कृष्ण जैसी आत्मा अगर इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए तो कोई फूल गाड़ी बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े धनवान इस ज्ञान में आ जावे। यहाँ तो देखो अपनी जो शरीर रूपी मोटर है वो भी अपनी नहीं है। क्या बात, इस समय की बात कही, जिस समय ये मुरली दादा लेखराम ब्रह्मा के तन से चल रही थी उसके लिए बोला कि ये भी अपनी मोटर नहीं है, क्योंकि आत्मा ने अपना देह अभिमान तोड़ा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर फिर भी रह गया, इसलिए ये मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर कब हो, जब तन का भान खलास, इस दुनिया के विनाशी धन का भान खलास, और जो सगे संबंधी जन हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। संपर्की और संबंधी हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। ये तन तन न रहे, संबंधी संबंधी न रहे, हर प्रकार से आत्मा निराकारी स्टेज को धारण करने वाली बन जाए। ये शरीर को लोन लिया हुआ है, ये मेरा तन नहीं है। कौन सा? आता ही हूँ पतित शरीर में। क्या कृष्ण के तन को नहीं पतित कहेंगे? सीढ़ी का चित्र बनाया है तो उसमें कलयुग के अंत में जो पतन की स्टेज दिखाई है उसमें कृष्ण की सोल ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है या पड़ा हुआ दिखाया है? पड़ा हुआ दिखाया है। पड़ा हुआ दिखाया है। पुराने 30x40 इंच के चित्र में देखो वो फिर भी खड़ा हुआ है। और सचिव के आज में क्या दिखाया है? सचिव के आज में क्या दिखाया है? पहले जन्म में प्रिंस के रूप में खड़ा हुआ है। और सचिव के बाहर जो संगजुगी कृष्ण है वो तो राम की सोल है। उस राम की सोल का अपना शरीर है। हर कृष्ण की सोल भी उसमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है लेकिन उसका अपना शरीर नहीं है। जिसका शरीर है उस तन में ही परमात्मा बाप प्रवेश होते हैं।
वो सबसे दुनिया का पतित तन कहा जाता है।
पतित से पतित कानी कांटे में आता हूँ। कानी कांटे में आकर उसको क्या बनाता हूँ? बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। किंग फ्लावर बनाता हूँ। किंग फ्लावर कहा जाता है कमल के फूल को। कीचड़ रहता ही है और लेप छेप उस पर नहीं लगता। तो परमात्मा बाप का वो पार्ट है। परमात्मा बाप ही निर्लेप का पार्ट बजाता है। आत्माएं निर्लेप नहीं होती। आत्माएं तो नंबर वार बनेगी। तो बोला मैं आता ही हूँ पतित शरीर में। तो गुप्त है कभी बात नहीं। कृष्ण जैसे सजे सजाए रूप में आ जाए तो सारे संसार में प्रत्यक्षता होने में देर न लगे। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो तो कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा, अनेक मंदिर होंगे। फिर उन्होंने एक मंदिर को नहीं लूटा, कितने मंदिरों को लूटा होगा? अनेकों मंदिरों को लूटा होगा। तो सारी देहद की हिस्ट्री जियोग्राफी को तुम जान गए हो क्या? मंदिर दर कहते हैं घर को, और मन तो मन है ही। मन रूपी जो मूर्ति है उसका दर मन है। ब्रह्मा बुद्धि है शंकर और संस्कार शक्ति है विष्णु। तो भक्ति मार्ग में जो मंदिर बनाया उस मंदिर को तोड़ने वालों ने उसको तोड़ा। एक मंदिर को नहीं तोड़ा, अनेक मंदिरों को तोड़ा है। पवित्रता को भंग किया है। पार्ट चल रहा है।
मुसलमानों का पार्ट बजाने वाले ब्राह्मणों की संगति भी दुनिया में है,
बाहर की दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं आधारभूतों की दुनिया में ही है, ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में जो उन मंदिरों को भगवान के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में ये चलन प्रसिद्ध रही है कि विदेशियों के पांव मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। सूत्र है उनके पांव भी मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। अब वो बात तो है, बात तो सारी यहां की है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो घुस के बैठ जाते हैं, कहते हैं देखे इनको पता चलता है कि नहीं चलता है, कि हम विकार में व्यभिचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखे इनको पता कैसे चलता है। बाप कहते हैं हमको तो दरकार ही नहीं ये जानने की, क्या तुम विकार में व्यभिचार में जाते हो या नहीं जाते हो। जब टाइम आएगा तो स्वतः ही सब कुछ प्रत्यक्ष लगेगा। इसलिए मुरली में बोला है इस ब्राह्मणों की दुनिया में किसी की कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहेगी, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे छिप नहीं सकता, बाप की नजरों से तो बच ही नहीं सकता। मधुबन को शीश महल कहा जाता, शीशे का महल, जिस शीशे के महल में सबके अपने अपने चेहरे प्रत्यक्ष होते हैं और एक दूसरे के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और उस शीश महल का सबसे बड़ा शीशा कौन है? बाप है सबसे बड़ा आरती, ज्ञान का दर्पण। उसके सामने तो छिपने की बात ही नहीं। तो सारी हिस्ट्री और बेहद की जागृति को अब तुम बच्चे जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल, ऐसा ज्ञान दर्पण है। तो बड़े से बड़ा ज्ञान दर्पण है नाम कहा जाता है। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है क्या? ये ज्ञान दर्पण यहाँ हर एक को दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। और असल ज्ञान है मन मना भव, क्या तीन शब्दों से मिलकर के ये सत बनता है। मत मना भव, मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समझ। मेरे मन में समा जा का मतलब ही हुआ मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तेरा एक भी संकल्प मात्र मेरे संकल्प के बरखिलाफ न चले, ऐसा समा जा। वाचा से भी कर्म करना, विपरीत कर्म करना, और कर्मेंद्रियों से जो बाप चाहता है उसके बरखिलाफ कर्म करना, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या कहा, क्या बनना है? मन मना भव, अपने मन के संकल्प मात्र को भी मेरे अंदर समाए दे, संकल्प भी विपरीत न चले। तो ज्ञान है मन मना भव का, इससे सदगति होती है। क्या कहा, जो मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्प मात्र को भी डुबो देंगे, समाए देंगे, बाप के समान संकल्प चलाने वाले होंगे, उन्हीं की ही सदगति होगी, उन्हीं की ही सच्ची गति होगी। माना शरीर रहते रहते सुख की दुनिया में जा सकेंगे, नहीं तो विनाश की विभीषिका में हाय हाय करके शरीर छोड़ना पड़ेगा, अंत मते तो गति हो जाएगी, अनेक जन्मों की सदगति से वंचित हो जाएंगे। मान लो दो जन्म भी ऊपर रहे परमधाम में और 82 जन्म लिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, तो दो जन्म की सदगति से तो वंचित हो गए ना। कोई सतयुग त्रेता लगातार 21 जन्मों तक वंचित रहेंगे तो कितने जन्मों की सदगति खलास हो गई? 21 जन्मों की जिनकी सदगति की प्राप्ति खलास हो गई, वो सिर्फ एक जन्म के लिए ही सुख भोगेंगे और बाकी सब जन्म दुख ही दुख भोगते रहे। एक जन्म की सदगति मिलेगी,
जो द्वापर से जन्म लेते हैं और बाकी जन्मों में उनकी दुर्गति ही होती रहेगी शरीर की। तो पहली पहली पढ़ाई है मन मना भव की, उसके बाद दूसरी पढ़ाई मध्यादि भव। मध्यादि भव की पढ़ाई है जो पढ़ाते हैं बाद में, पहले मन मना भव बने फिर मध्यादि, मत माना मेरे में, यादि माना यजन करने वाले, माना कर्म करने वाले। जो भी कर्म करें किसके लिए करें? मेरे लिए करें। नौकरी करते हैं तो बुद्धि में ये प्रैक्टिकल बात समाई हुई हो कि जो भी पैसे मिलते हैं हमें ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। ईश्वरीय सेवा में लगाने का मतलब ये नहीं है कि सेंटर में जाकर के इंचार्ज को ही दे देंगे या बाबा के ही हाथ में रख देंगे, नहीं। जो भी ईश्वरीय सेवा करने में, आने में, जाने में और अनेक प्रकार से खर्चा होता है उसमें खर्च करेंगे, मतलब ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। अपने लिए सिर्फ उतना ही लेंगे जितना बाप ने मुरली में बोला है। पेट के लिए क्या चाहिए? पाव भर अन्न चाहिए। पेट पाव भर मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता। अगर ऐसी भी स्टेज आ जाए तो भी हम उस स्टेज पर चलने के लिए तैयार हैं। तो बताया मन मना भव के बाद है मध्यादि भव की पढ़ाई। मन मना भव मध्यादि मामेव नमस्कुरु, उस संस्कृत गीता में सिर्फ लिख दिया है, उस गुह्यार्थ को समझते कहाँ है कि जीवन के जो भी कर्म है, जो भी वाचा है वो उसके अर्थ समर्पित होनी चाहिए। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है क्या? टीचर का भी पाठ चलता है और गुरु जो सदगति देने वाला है वो पाठ भी इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्यों? वो झूठी झूठी नंस है और तुम सच्ची सच्ची नंस हो, ये क्या बात हुई? नन नन वट वन, क्या जिनके अंदर ये धारणा हो, कौन सी धारणा? कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। नन नन इज द ट्रुथ, वन इज द ट्रुथ, एक सच्चा और बाकी सब झूठा। तो सच्ची सच्ची नन तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करते हो। किसको याद करते हो? एक दो को याद करते हो, एक सुप्रीम सोल और दूसरा मुकर्रर रत्न। किसको किसको याद करते हो? तुम एक दो को याद करते हो, ऐसे नहीं तुम सिर्फ ज्योतिबिंदु शिव को ही याद करते हो। सिर्फ निराकार को याद करने वाले तो क्या हुए? क्या हुए? तुमने वृत्ति मार्ग वाले हो गए, या वो तो कहेंगे विदेशी हो गए, विधर्मी हो गए। तुम तो वृत्ति मार्ग वाले हो, तुम सिर्फ आत्मा को ही मान्यता नहीं देते हो, सिर्फ शरीर को ही मान्यता नहीं देते हो, दोनों को मान्यता देते हो। प्रकृति को भी मानते हो और पुरुष को भी मानते हो, माता को भी मानते हो और पिता को भी मानते हो। तो तुम एक दो को याद करते हो, नंस को गले में क्रास पड़ा रहता है। क्या? नंस को गले में क्रास पड़ा रहता है। कहते हैं कि हम गॉड और क्राइस्ट को याद करते हैं, क्योंकि क्राइस्ट गॉड का बच्चा है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गाड का बच्चा नहीं था, गाड से उसकी डायरेक्ट कोई पैदाइश नहीं हुई थी। पैदाइश किससे होती है? पैदाइश तो मनुष्य से ही होती है। वो तो कहते हैं कन्या कुमारी कन्या से क्राइस्ट का जन्म हुआ। अब असली बात हम जानते हैं कोई पैदाइश होने की बात नहीं है क्राइस्ट के लिए। जो शरीरधारी सोल थी उसमें क्राइस्ट की सोल का प्रवेश होता है। तुम असली बात जानते हो, क्राइस्ट की आत्मा वो गाड का बच्चा थी। क्या जो शरीरधारी जिसका नाम पड़ा हुआ है तो वो उस समय गाड का बच्चा नहीं? ऐसे नहीं कि उसने कोई गाड से जन्म लिया। ऐसे तो हम सभी गाड के बच्चे हैं। क्या आत्मा रूप में तो हम सभी किसके बच्चे हैं? गाड फादर के बच्चे हैं। 18-10-92 की मुरली का तीसरा पेज। बाप आकर के तीन धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से तीन धर्म? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। जो संपूर्ण ब्राह्मण मनते हैं वो देवता की कोटि में चले जाते हैं, और जो अधूरे ब्राह्मण रह जाते हैं, पास नहीं होते, वो कौन सी लिस्ट में जाते हैं? क्षत्रिय धर्म की लिस्ट में आ जाते हैं। ये संगम युग में तीनों धर्म क्लियर होते हैं तो वो ऊंचे से ऊंची छोटी ब्राह्मण बनते हो। क्या तुम क्या बनते हो? तुम ऊंचे से ऊंची छोटी बनते हो। सब ब्राह्मणों में सबसे उत्तम अंग कौन सा है? छोटी, क्योंकि तुम ऊंची से ऊंच विश्व की सेवा करते हो। क्या तुम लिमिट में बंधे हुए नहीं हो? क्या कि तुम शंकर पार्टी में जाने वाले हो, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते, तुम निकल के बाहर हो जाओ। कोई विशेष रहस्य होगा ना? बात कोई चरिया घरिया थोड़े ही है जो एक बार एक सत्य फालतू में छोड़ देगा। और कोई एक बार छोड़ने की बात नहीं है, मुरलियों में कई बार ऐसा वाक्य आया है जहाँ कल्प 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 तीन बार तहराया है। तो उसका विशेष अर्थ क्या है कि हर युग में चार अवस्थाएं समाई हुई है। चार अवस्थाएं सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। ब्राह्मण बच्चे इन चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। सूटी पीरियड में संगम युग में चार युगों की जो रिहर्सल होती है उसमें ब्राह्मण बच्चे चार अवस्थाओं के पसार होते हैं। और हर युग की शूटिंग के अंत में परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। सचिव की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है तो त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता रहता। फिर द्वापर के आदि में प्रत्यक्ष होता है तो द्वापर के अंत तक प्रत्यक्ष होता रहता। बच्चों की बुद्धि में बच्चों की लाइन लगी ही रहती है समझने के लिए, उस बात को पहचानने के लिए। और लास्ट में त्रेता की शूटिंग में भी प्रत्यक्ष होता है। तो जिन जिन बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होता है हर बच्चा चार अवस्थाओं से पसार होता है। क्या जो भी बच्चा पहली बार ज्ञान में आता है, बाप को पहचानता है या बाप के प्रति समर्पित होता है तो सतो प्रधान बुद्धि होती है, भावना सात्विक होती है, बाप के प्रति प्यार असीम प्यार होता है। कोई की बातों में उस समय आया हुआ नहीं होता। पर धीरे धीरे अवस्था नीचे गिरती है। जैसे जैसे दूसरे ब्राह्मण बच्चों के संग में संपर्क में आता जाता है
उनकी बातों का प्रभाव पड़ता जाता है, मनुष्य गुरुओं की मत को अपनाता जाता है और एक बाप की वाणी को भूलता जाता है। वैसे वैसे सतो ग्राम से सतो सामान्य, सतो सामान्य से रजो और रजो से तमो की ओर भागते हैं। तो इसलिए बोला कल्प 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 के संगम ऊपर बाप वर्षा देने आती है। कहीं का वर्षा ज्ञान रत्नों का वर्षा देने आते हैं, गुण रत्नों का वर्षा देने आते हैं, शक्तियों का वर्षा देने आते हैं, हर प्रकार का वर्षा देने आते हैं, गति सदगति का वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युग युगी निषिद्ध है। गीता शास्त्र में क्या लिखा है? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। हर युग में आता हूँ तो चार बार चार अवतार दिखाने चाहिए, दशावतार और चौबीस अवतार क्यों दिखाई दिए? ये कोई पूछता ही नहीं। बात कहाँ की है? बात है संगम युग की, कि संगम युग में बाप ज्ञान जब ज्ञान सुनिए जब आते हैं तो चार युगों में प्रत्यक्ष होते हैं। एक ही उपकरण रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, चार बार प्रत्यक्ष होते हैं। कल्पाक्षर बीज से बीज से निकाल दिया और युग युग में डाल दिया। उन्होंने शास्त्रों में क्या दिया? कल्प कल्प संभवामी होना चाहिए, माने हर कल्प की शूटिंग में मैं आता हूँ, ये होना चाहिए। तो शूटिंग का भी उनको ज्ञान नहीं है, माना पुरुषोत्तम संगम युग का भी उनको ज्ञान नहीं है और कल्प का भी उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे युग युग लिख दिए। उनका नाम ये है पतित पावन। इनका क्यों नहीं कहा? इनका माने नजदीक में जिसके बैठा है बाजू में, ब्रह्मा के बाजू में बैठे के मुरली चल रही थी ना, तो ये क्यों नहीं कहा कि इनका नाम ही है पतित पावन? माना ज्यादा लेखना ब्रह्मा का जो साकार रूप है जिसे भगवान समझ लिया है, संसार का सर्वोपरि साकार भगवान समझ लिया है, शक्ति को परिवर्तन करने वाला, वो पतित पावन क्यों नहीं बताया? उनका कहेंगे दूर क्यों कर दिया? भविष्य की तरफ इशारा क्यों कर दिया? क्योंकि वो तन वो मुकर्रर रथ है जिनके द्वारा सारी शक्ति पतित से पावन बनती है, वो प्रत्यक्ष होने वाला है। उस समय तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो युग युग आकर के क्या करेंगे? जब उनका नाम ही है पतित पावन, तो सारी शक्ति जब पतित बने तभी तो आवेंगे कि हरियु में आवेंगे। सच वो सोलह कला संपूर्ण, त्रेता चौदह कला संपूर्ण, द्वापर आठ कला संपूर्ण और कलयुग चार कला से घट करके जीरो कला कला ही, तो पूरी ही कलाएं उतर जाएंगी, पूरा ही पतित पने का ग्रहण लगेगा, तब आऊंगा या बीच में आ जाऊंगा, हरियु में आता रहूंगा। कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते हैं। क्या कहा? कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते हैं। जब एक ही बार आकर के पावन बना के चले जाते हैं तो गुरु पर ये क्यों कहा कि बरोबर बाप कल्प 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 के संग में होंगे वर्षा लेने आते हैं? इसे साबित होता है कि संगम युगी शूटिंग की बात कर रहे हैं, 5000 वर्ष के कल्प की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। क्या? मैं पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता हूँ, सारी सृष्टि की सदगति करके वापस जाता हूँ, बार बार मैं नहीं आता हूँ।
एक ही बार एक ही को कर रथ से बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होता फिर मौका नहीं लगेगा। इसलिए देखो तलाक नहीं देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक देती क्या? स्त्रियां पति को तलाक देती हैं आजकल। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, तुम सब सजनियां हो, तो तुम मेरे को तलाक मत देना। हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती क्या? जो देवी देवता सनातन धर्म के थे, जो द्वापर युग से अपनों को हिंदू कहने लगे, उनमें जो नारियां हिंदू नारियां थी वो पति को कभी भी तलाक नहीं देती थी। बूढ़ा लंगड़ा अंधा कोढ़ी काना कुब्जा दुष्ट स्वभाव वाला चोर डकैत कैसा भी क्यों न हो, लेकिन जैसा मिल गया उनको एक बार वरण कर लिया तो कभी भी उसको तलाक नहीं देती थी। तो ये किसने सिखाया? ये तलाक देना किसने सिखाया? फिर रावण ने। किसने? दस सिरों वाले रावण ने सिखाया, और कोई ने नहीं सिखाया। जो विदेशी और विधर्मी निकले उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने सिखाया, हम उन विदेशियों और विधर्मियों के प्रभाव में आते रहे और दूषित होते रहे। तुमको मुरली सुननी है जरूर क्या? हिंदू नारियां कभी तलाक नहीं देती थी, अब तलाक देने लग पड़ी। हिंदू नारियां भी हिंदुस्तान में भी तलाक देने लग पड़ी तो किसका प्रभाव पड़ा? किसका संग का रंग लगा? किसके शासन में आ गए? विदेशियों और विधर्मी शासन में आ गए, प्रभावित हो गए। तो प्रभावित न हो इसके लिए क्या करना है? मुरली रोज जरूर सुननी है। क्या कहा? क्या जो क्लास नहीं करते हैं, मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो उनका फिर ये हाल होता है। इसलिए मुरली जरूर सुननी है। मुरली न सुनने से तो गोया बाप टीचर को भूल गया। इसको किसको भूल गया? बाप को भी भूल गया और टीचर को भी भूल गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे। हर कल्प में क्या होगा? नापास होते रहेंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी, कितने सुप्रीम टीचर की कब पढ़ाई पढ़ी है, टीचर का रिगार्ड नहीं किया, पंक्चुअल नहीं रहा, रेगुलर नहीं रहा, पढ़ाई कम पढ़ी इसलिए कम पद पाया। सबको मालूम पड़ जाए। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, वो या मुक्ति चाहते हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें। जब सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब दुखी हो जाते हैं तो सब सुमिरन स्मरण करते हैं किसका? एक बात तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। ये सुख दुख का खेल भारत पर ही है। क्यों? दूसरे धर्म वाले तो बाद में आते हैं, तो पूरा खेल तो खेलते ही नहीं, वो तो ऐसे बाई प्लाट हो गए क्या?
वो 22 लाख धर्म है, उनका खेल ही 22 लाख का है। बीच में खेल शुरू होता है और बीच में लोप हो जाता है। तुम हो हीरो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी के फॉलोअर हो, इसलिए पूरा 84 जन्मों का पाठ तुम बजाते हो। ये सुख दुख का खेल भारत पर, भारतवासियों पर है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, हम ही तो अब विदेशियों के प्रभाव में आकर शुद्ध बन गए। तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानता है। क्या कर देते हैं हम सो का अर्थ? हम सो का अर्थ क्या कर देते? सो अहम का अर्थ क्या करते हैं? सो अहम का अर्थ कर देते हैं शिवो अहम। हम आत्मा वही है जो परमात्मा है, माने हम भी आत्मा परमात्मा का रूप है, वो ये अर्थ कर देते हैं। बाकी क्या कराते हैं? सो अहम माने हम वो हैं, कौन जो सचिव आज में देवता है, वही देवता हम अब नर बन चुके हैं, भिखारी मनुष्य बन चुके हैं। अब नरक को नारायण बनाने के लिए बाप फिर से आया हुआ है। तो बाप कहते हैं मनमना बाबा मध्यादि बाबू, क्या अगर नरक से नारायण बनना है इस जन्म में, नरक से अगला जन्म लेकर फिर से नहीं बनना है तो क्या करना पड़े? दो बातें करनी पड़े, मनमना भव और मध्यादि भव। वो संकल्प मात्र होगी अर्पण कर दे मेरे में समाधि, मेरे में अर्पण कर दे मेरे में समाधि, और फिर बाद में क्या करे? ये तो नहीं संकल्प तक की बात, लेकिन फिर प्रैक्टिकल में जो भी कर्म करे वो किसके लिए करे? मेरे लिए करे। जो कर्म मेरे को पसंद ना हो वो न करे। खुद धारण करके और को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। ये दो महामंत्र हैं, कौन कौन से? मनमना भव और मध्यादि भव। इन दो महामंत्रों को खुद भी पूरा धारण करें और दूसरों को भी पूरा धारण कराए सकें तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ एक की याद में रह करके पावन रहना, कितना फर्क हो गया। क्या कहा? कहाँ गंगा में स्नान करना, कौन सी गंगा में? चाहे पानी की गंगा हो और चाहे ज्ञान की चैतन्य गंगा हो, उसमें श्रद्धा विश्वास भावना अर्पण करना, उनको ही टीचर समझ लेना, उनको ही गुरु मान लेना, उनकी ही बातों पर चल पड़ना, एक बात हुई। और उस सुप्रीम सोल जो शिव शक्ति पर आया हुआ है मुकरर रथ में, उसको प्राप्त टीचर सदगुरु मानना, उसकी एक की याद में रहना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। बच्चों को ज्ञान के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए भाई जी, ज्ञान के पैसों की बहुत कदर होनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं बाबा नौकरी बहुत कड़ी है, धंधा बहुत विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए हमको टाइम नहीं मिलता, मुरली पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, क्लास करने का भी टाइम नहीं मिलता, कोई के पास बैठ करके जब टाइम मिले तो मुरली का लेन देन करने मात्र का भी टाइम नहीं मिलता। तो पैसे की कदर हुई या ज्ञान की कदर हुई, क्या कहेंगे? पैसों की कदर की ना। इससे ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। क्या
ज्ञान धन से?
इससे ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। बाप गरीब निवाज है, ऐसे नहीं समझ लेना कि हम पैसा कमाएंगे तो हम यज्ञ में अर्पण करेंगे तो बाप खुश हो जाएगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा बाप की नजरों में। वो तो मनुष्य गुरु होते हैं, जब प्रवचन करते हैं तो धनवानों को आगे बैठा लेते हैं, गरीब बेचारे पीछे ही बैठते हैं, दूर सस्ती भी नहीं पड़ती। वो धनवानों को पकड़ते हैं, कौन देहदारी धर्मगुरु, कौन सी दुनिया में? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में। वो धनवानों को पकड़ते हैं और बाप गरीब निवाज है, अबलाओं को, कन्याओं को जिनके पास धन होता ही नहीं, बांधेलियों को, नर्वस हुए बच्चों को, ऐसे सच्चे बच्चों को, गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है, जो अगर सच्चाई से दुनिया में धंधा भी करते हैं तो उनका धंधा चल ही नहीं पाता। झूठे सशक्त होते रहते हैं और उनका धंधा भी चौपट हो जाता है। ऐसे गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है, इनकी पाई पाई भी पड़ेगी। क्या ऐसे गरीबों की पाई पाई भी पड़ेगी तो उस पाई पाई से ये बच्चे साहूकार बन जाएंगे। स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही होंगी। अगर हेल्थ वेल्थ है, क्या यहाँ कौन सी हेल्थ वेल्थ है? यहाँ मन अगर हेल्दी है, इतनी तन की हेल्थ की बात नहीं, उसके लिए तो बोला है ये तन सड़ता जाएगा और आत्मा मनोबुद्धि आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो इस दूसरे शरीर की हेल्थ की बात नहीं कही, क्या कहा? अगर हेल्थ वेल्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, हेल्दी है, वेल्दी है, तो हैप्पीनेस की जरूरत है। है भी नहीं कोई करोड़पति है इस दुनिया में इस धन का, और शरीर से एकदम पहलवान स्वस्थ है तो वो दुखी नहीं हो सकता? ऐसी कोई गारंटी है? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सब दुखी हो रहे हैं। अगर हेल्थ हो, वेल्थ न हो तो हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। सचिव में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां रोना कब नहीं होता? क्या कहा? यहाँ भी अगर किसी को रोना होता है ब्राह्मणों की संगत में भी दुनिया में, तो उससे क्या साबित होता है? हैं? बाघेली माताएं बहुत रोती हैं। रोने का कारण क्या है? क्या चीज नहीं है तीनों में से उनके पास? हैप्पीनेस नहीं है तो क्यों नहीं है? वेल्थ नहीं है, ज्ञान की वो गहराई नहीं है, इसलिए रोती है। अगर भरपूर वेल्थ हो तो रोने का सवाल ही नहीं, तो वहां सत्य में रोना कब होता ही नहीं। संगति भी स्वर्ग में भी कब रो नहीं सकते। तो अब भी तुम बच्चों को यहाँ रोना नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते। क्या किनको पसंद करते हैं? ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, हर्ष मुख रहने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, कभी न रोने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। एक ही बात है या अलग अलग बातें? एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो हर स्थिति में अपने को सेट कर लेगी ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया की तूफान बच्चों को मुरझाए देते हैं, क्या सारा ज्ञान ही उड़ाए देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, क्या हेल्थ काहे से मिलती है? हॉस्पिटल से। तो माउंट आबू में क्या खोल देना चाहिए? ग्लोबल हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। अरे यहाँ जिस्मानी हॉस्पिटल की बात है या रूहानी हॉस्पिटल की बात है? जिस्मानी हॉस्पिटल तो दुनिया में कितने खुलते रहे, जो भी धर्म वाले आए सबने वो जिस्मानी हॉस्पिटल खुलवाए। उनसे दुनिया में रोग बढ़े हैं कि घटे हैं? मन जो बढ़ता गया जीव जो दवा की, तो फायदा क्या हुआ? बाप तो आकर के ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, एक ही बार ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जिससे 21 जन्म के लिए हम निरोगी बन जाएंगे। तो हॉस्पिटल से वेल्थ मिलती है, वो हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है, और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है? रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी है। क्या है इसका नाम? रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी है। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या है? रूहानी हॉस्पिटल की। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, तीन पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं मेरे बच्चे, क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये शिकायत की हो कि बाबा हमारे पास तो एक ही कमरा है, हमको गीता पाठशाला खोलने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको परमिशन न मिली हो? अगर लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनने वाले कोई बच्चे हैं जो ये पक्का निश्चय करके बैठे हैं कि हम तलाक नहीं देंगे, क्या बल जानते हैं कि सतयुग में जोड़ियां बदल जाएंगी, लेकिन पक्का निश्चय क्या किया हुआ है कि हम तलाक नहीं देंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे? ऐसी कोई युवा जोड़ी बच्चे हैं, अगर उनके पास एक ही छोटा कमरा है।